ओम शांति। भाग्य और भाग्य विधाता के स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप यज्ञ के प्रति बलिहार और कुर्बान ज्ञानी योगी तपस्वी जीवन में हमेशा सुखद अनुभूति में रहने वाले आदरणीय आशा दीदी जी का हम करताल ध्वनि से स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं। कहते हैं वृत्ति से दृष्टि वृत्ति कृति सब कुछ बदल जाता है और उसी से ही वायुमंडल तैयार होता है। और इस अभ्यास को समझने के लिए और समझाने के लिए एक सूक्ष्म फरिश्ते के रूप का अनुभव करने वाली आत्मा की आवश्यकता होती है। और ऐसे हमेशा सूक्ष्मते सूक्ष्म अभ्यास फरिश्ते के स्वरूप का अभ्यास करने वाले सम्माननीय परम आदरणीय आशा दीदी जी बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, वृत्ति द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन। दीदी जी का परिचय इस तरह से है, 1973 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया।
ओम शांति सिस्टर, मैं अपना परिचय देती हूँ। ओम शांति। मैं परम सौभाग्यशाली आत्मा हूं जो कि प्यारे बाबा को 1958 पिछली सेंचुरी में 58 में बाबा का परिचय मिला। सारा परिवार ज्ञान में बाबा के कहने से श्रीमत से पढ़ाई पढ़ी। पढ़ाई संपन्न करने के पश्चात यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। उसके बाद 1972 में संपूर्ण रूप से स्वयं को बाबा के यज्ञ में स्वाहा कर दिया। 72 से 73 तक दादी जी ने कुछ सेवा केंद्रों पर रखा, बेंगलोर, मधुबन और इंदौर। 73 फरवरी में जब दिल्ली में पांडव भवन बना, जो सारे विश्व के भाई बहनों ने मिलकर के लिया था, 73 की बात है, जब उसको शुरू किया तो वहां इंटरनेशनल सेंटर फॉर वर्ल्ड रिन्यूअल इस नाम से उसका आरंभ किया और विदेश की सेवाओं के निमित्त डिप्लोमैट्स वीआईपीस सेवाओं के निमित्त उसका निर्माण किया गया था। तो वहां पर दादी जी ने बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने पहले दिन से फर्स्ट डे से पांडव भवन में रखा, जहां गुलजार दादी, नर्मन शांता दादी, ऑलराउंडर दादी, हमें तीन तीन दादियां मिली थी। और उसके पश्चात फिर अपने यहां पर 30 साल में पांडव भवन में थी सेवाओं में। मेरा भाग्य रहा जो मुझे वीआईपी सेवा, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो पहले आते रहे हैं ज्ञानी जैल सिंह जी के टाइम से, अटल जी, आडवाणी जी, नरसिम्हा राव जी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ये सब के सब जो आते रहे हैं उन दिनों में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आदि आदि, तो सेवा का अवसर मिला। 30 साल वहां संपन्न करने के पश्चात जब बाबा ने ओम शांति रिट्रीट सेंटर खोला तो वहां पर भी फर्स्ट डे से बाबा ने बिठाया और अभी तक तो वहीं पर हूं, आना जाना करती हूं लेकिन वहां सेवाओं में है। संगम युग पर बाबा के काम आना ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप सबका अभी क्लास हुआ है, गीता दीदी ने कराया कि संगम युग पर सहज प्राप्तियां, यही क्लास था ना। तो मैं आपको एक मिनट देती हूं, आपके साथ जो बैठे हैं उनके साथ आप शेयर करो उस क्लास से आपको अपने लिए क्या अनुभव हुआ। मुझे संगम पर सहज प्राप्ति बाबा का मिलने के बाद, बाबा ने बोलना है, बाबा मिलने के बाद आपको सहज पुरुषार्थ करते क्या प्राप्ति हुई। एक मिनट में दो दो जने आपस में शेयर करो, आप सब शेयर करो क्या प्राप्ति की आपने संगम पर। आप दो दो हो जाओ, सभी करो सभी करो, हर एक अपना अनुभव शेयर करो, पीछे भी करो, पांडव पीछे, सब लोग करो, अपनी प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ, संगम पर मुझे क्या प्राप्ति हुई है। हो गया हो गया, सबने किया किया तो हाथ हिला के बताओ किया, पीछे वालों ने भी किया किया। आपके पास प्राप्तियों की पूरी लिस्ट होगी, जो कभी न मन न चित अपनी सोच से बाहर, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को वो सूक्ष्म शक्तियां याद दिलाई, अनुभव कराई, जिनके उपयोग से हम दुनिया बदल देते हैं। उन शक्तियों में एक शक्ति है हमारी वृत्ति, जो आज का हमारा टॉपिक है। वृत्ति से वायुमंडल बनाना बदलना। वृत्ति क्या है? वृत्ति हम किसे कहेंगे? यदि आप शब्द को देखेंगे तो वृत्ति माना वृत्त, वृत्त कहते हैं सर्कल को, गोले को। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो कर्म हम करते हैं, कर्म हम बार बार रिपीट करते हैं तो उसके संस्कार बनते हैं, यही कहते हैं ना, कर्म हम जो बार बार करते हैं उससे संस्कार बनते हैं। ऐसे ही जो संकल्प हम बार बार करते हैं उससे हमारी वृत्ति बनती है, एटीट्यूड, पॉइंट ऑफ व्यू, व्यू पॉइंट, नजरिया, ये हमारी वृत्ति से बनता है। इसलिए बाबा ने हमें वृत्ति का महत्व बताते हुए संकल्पों का महत्व बताया कि बच्चे आपके संकल्प कितने श्रेष्ठ, कितने उत्तम, कितनी हाई क्वालिटी के होंगे। क्या कारण है जो शास्त्रों में कहा गया कि भगवान ने संकल्प से सृष्टि रची, कहावत है, एक संकल्प से रची या संकल्पों का उपयोग किया। प्यारे बाबा ने हम सब बच्चों के संकल्पों का प्रयोग किया है, इसीलिए शिवलिंग के ऊपर बूंद 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 टपकती हुई दिखाई जाती है। हर संकल्प बूंद के सदृश है। जब हम बाबा के बनते हैं, तन मन धन, इसके बाद छोड़ दीजिए, ये बहुत मोटी बातें हैं, लेकिन जो सूक्ष्म चीज है, हमारे संकल्प, बाबा उसका महत्व बताकर संकल्पों की निधि, प्रॉपर्टी, संकल्पों की शक्ति का एहसास कराते हैं। उन संकल्पों को हम लोग मोटे रूप से कहते पॉजिटिव नेगेटिव वेस्ट, ये सब कह देते हैं, लेकिन संकल्प के पीछे एक इंपॉर्टेंट चीज है जिस आधार से ये सृष्टि या तो कलयुगी या सतयुगी बन जाती है, और वो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बाबा कहता है भावना। भावना, कोई संकल्प करते हैं, बहनें क्या कहती हैं, मेरी ये भावना थी। सुनंदा बहन ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो शोभा दीदी, भावना। अगर नेगेटिव है तो उसके पीछे भावना क्या है, अगर पॉजिटिव है उसके पीछे भावना क्या है। बाबा ने अपनी मुरलियों के द्वारा हमें स्पष्ट किया है कि बच्चे तुम्हारी संकल्पों के पीछे जो भावना है उससे वायुमंडल बनता है, और उस भावना को जितना हम स्थिर रखते हैं उस तरीके की वृत्ति बनती है। बहुत सुंदर बाबा ने कहा कि आप बच्चे बाबा को कहते हो बाबा फला ये 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 ये, बाबा ने कहा मैं पूछता हूं, बाबा ने कहा मैं पूछता हूं कि जब आप ये कहते हो फला ऐसा फला ऐसा फला ऐसा, क्या आपको वो अच्छा लगता है? नहीं। तो उस किचरे को अपने अंदर क्यों रखते हो? क्योंकि उससे आपकी वृत्ति का निर्माण होगा। तो कचरा अपने अंदर रखना अच्छा है क्या? नहीं। उसको बाबा ने कहा, अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से उसे आपको समाप्त करना है। और जब बाबा ने भावनाएं बताई, तो आज सवेरे मैंने टीचर्स क्लास में भी बताया था, बाबा ने एक मुरली में, शायद 93 की मुरली है, अक्टूबर 93 की, जिसमें बाबा ने पांच प्रकार की भावनाएं बताई जो हमारे संकल्पों को क्रिएट करते हैं। संकल्पों से वृत्ति बनती है, वृत्ति से वाइब्रेशंस बनते हैं। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, इससे बहुत अच्छे वाइब्रेशन आ रहे थे, इससे इतने अच्छे वाइब्रेशन नहीं थे। कोई कोई जगह पर हम जाते हैं, हम बैठना पसंद करते हैं, कोई कोई स्थान से हम भागना पसंद करते हैं, क्या कारण है? वाइब्रेशंस। वो वाइब्रेशंस हमारी वृत्ति से बनते हैं, और जैसे वाइब्रेशंस होते हैं वैसा वायुमंडल बनता है। तो बाबा कहता है, अभी तो तुम चेतन हो, तुम्हारे जो जड़ मंदिर हैं, उन मंदिरों में भी इतने अच्छे वाइब्रेशन होते हैं, वायुमंडल होता है। तो जब तुम चेतन मूर्तियां हो तो क्या तुम वो वायुमंडल नहीं बना सकते? वायुमंडल बनाना अपने हाथ में। और बाबा का इसमें स्पेशल ये है, एक अकेली अगरबत्ती अगर इतना काम कर सकती है, दुर्गंध को मिटा सकती है। बाबा ऑफिस जाने वालों को क्या क्या कहते हैं? जब ऑफिस वाले बाबा को कहते हैं, बाबा वहां का वायुमंडल ऐसा है, वहां के वाइब्रेशन अच्छे नहीं होते हैं, तो बाबा ने क्या कहा कि तुम रूहानी अगरबत्ती हो, और एक अगरबत्ती अगर वायुमंडल में शुद्धिकरण कर सकती है, तुम तो चेतन रूहानी अगरबत्तियां हो, तुम नहीं कर सकते। आज हम सबका अनुभव है, भाई बहने जो ऑफिसर्स में काम करते हैं आकर के क्या कहते हैं? लोग कहते हैं, आप तो कुछ न्यारे हो, निराले हो, आप तो इस दुनिया के नहीं हो, बोलते हैं ना। क्या चीज है आपके अंदर? हाथ नाक कान मुंह पैर तो आपके वही है जो उनके, काम भी आप वही कर रहे हैं जो वो लोग कर रहे हैं। वो क्या चीज है? वो है आपकी वृत्ति, आपकी भावना, जो जिस्मानी वायुमंडल से रूहानियत का अनुभव कराती है। वो रूहानियत आपने डेवलप की है, रोज बाबा की मुरली सुन करके, रोज योग लगा करके आपने अपने आप को जिस्मानी से रूहानी बनाया है। और वो रूहानियत जलवा दिखाती है आपके ऑफिस में, व्यापार में, परिवार में, सब जगह। अब नई सृष्टि का निर्माण जिसको हम कहते हैं, वो कोई दीवारों से और इन महलों से नहीं होने वाला है। दीवारें, महल, वृक्ष, माउंटेन्स, ये तो इस दुनिया में भी आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। हमारी बड़ी दादी जब बैंगलोर आए तो मैसूर देखने के लिए उनको लेके गए थे। मैसूर वृंदावन गार्डन था, आज से कुछ 60 साल पहले की बात है, 60 साल से भी ज्यादा होगा। तो वहां पर जब दादी गए तो वृंदावन गार्डन उन दिनों में बड़ा न्यारा एक ही प्रकार का गार्डन था, जिसमें म्यूजिकल फाउंटेन थे, कलरफुल फाउंटेन थे। उन दिनों ज्यादा गार्डन नहीं थे, आजकल तो बहुत हो गए। दादी जी ने वापस आके क्या कहा, सब कुछ अच्छा था, सिर्फ अगर वहां घूमने वाले देवताएं होते तो वो स्वर्ग। वहां देवता नहीं थे, साधारण मनुष्य इस दुनिया के थे, जिनके वाइब्रेशन और प्रकार के। मैं कभी कभी कहती हूं, हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, हमसे अच्छी स्मेल आनी चाहिए, लेकिन मेरी आत्मा से कैसी सुगंध आ रही है इस पर ध्यान जाता है? मेरे द्वारा औरों को कैसी सुगंध आ रही है सोचते? बाबा से मिलते हैं, दादियों से मिलते हैं, बड़ों से मिलते हैं, तो हम क्या कहते हैं, कितना अच्छा प्यार का, रूहानियत का अनुभव हो रहा था। हमें अपने आप से ये पूछना है, मुझसे कैसा अनुभव होता है। मुझ आत्मा से कैसा अनुभव औरों को होता है? खुशबू आती है, रूहानियत की खुशबू आती है। मुझ आत्मा से रूहानी प्यार की खुशबू आती है। मुझ आत्मा से शक्तिशाली स्थिति की खुशबू आती है। ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है। क्यों? बाबा ने मुझे चुना है। हम सब यहां पर जो बैठे हैं, कोटों में कोऊ में कोऊ है, हम साधारण नहीं है। भगवान ने मुझे चुना है। लुढ़कते पड़कते भटकते हुए हम नहीं पहुंचे, भगवान ने बड़ी प्लानिंग से मुझे लाया है। तो क्या मैं भगवान के काम आ रही हूं? भगवान जिस सृष्टि की रचना कर रहे हैं, उस सृष्टि की रचना में मेरा योगदान क्या है? सिर्फ मैं सत्युग में जाऊंगी, स्वर्ग में जाऊंगी, क्या इतना ही मेरा पार्ट है इस ड्रामा में? क्या इस ड्रामा में मेरा इतना ही रोल है? मुरली में आता है, तुम बच्चे हीरो हीरोइन का पार्ट प्ले करते हो। हीरो हीरोइन का पार्ट क्या है? क्या कभी मैंने अपने पार्ट को चेक किया कि सच में मेरा पार्ट हीरो हीरोइन का है? इसका नाम है जिम्मेवारी, आज्ञाकारिता। भगवान के सब बच्चे, 33 करोड़ देवताएं भी हैं और आज की पॉपुलेशन में अरबों हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। लेकिन मैं कौन सा बच्चा हूं? मैं अरबों वाला नहीं हूं, 33 करोड़ वाला भी नहीं हूं, मैं चुना हुआ बाबा का मोती हूं। वो मोती अपनी रौनक दिखाने वाला, कैसे कैसे वो मोती तैयार होता है? साधारण नहीं, मोती हूं, माला का मणका हूं, अकेला मणका नहीं हूं, माला का मणका हूं, ये सारी माला है। संगठित रूप से जब हमारी वृत्ति में परिवर्तन आता है तब वायुमंडल बनता है। अब हमें वायुमंडल को कैसे बनाना है? संकल्प के पीछे भावना, संकल्प से वृत्ति, वृत्ति से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल। अब वो कौन सी भावना मुझे रखनी है? मोटे रूप से पूछूंगी तो आप सब कहेंगे आत्मिक भाव। आत्मिक भाव भी क्या है? आत्मिक भाव क्या है? क्या मैं अपन को आत्मा समझ आपकी भ्रकुटी में आत्मा को देखूं, ये आत्मिक भाव है? आत्मिक भाव माना, ये मेरा भाई है, हम एक पिता के बच्चे हैं, एक परिवार के हैं। आत्मिक भाव तो यही है ना, हम सब आपस में भाई भाई हैं। हमारे में डिफरेंस नहीं है, एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक संस्कृति के हैं, एक ही लक्ष्य के हैं, एक ही दुनिया में जाने वाले हैं। अब मैं अपन से पूछूं, क्या हर कोई आत्मा मुझे अपने परिवार की नजर आती है? आदि भावना क्या है? बाबा निराकार ज्योति बिंदु, उससे जो कोई मिलता है उसको अपनत्व का अनुभव होता है। क्या मुझ आत्मा से हर एक को अपने पन का अनुभव होता है? उसकी बच्ची हो ना, वो अनुभव होता है? या ये फलाना, ये फलाना, ये फलाना, बुरा नहीं मानिएगा, बुरा नहीं मानना, तुरंत हमारी बुद्धि में डिफरेंसेस आ जाते हैं। इतने इतनी शक्तिशाली सृष्टि की स्थापना, इतनी शक्तिशाली सृष्टि की स्थापना डिफरेंस से नहीं होगी, उस आत्मिक भाव को जागृत करना होगा, प्रैक्टिकल में ट्रांसलेट करना होगा, व्यवहार में लाना होगा, वो प्रेम, वो सहृदयता, ये हमारा काम है। बाबा ने जो पांच भावनाएं मैं बताने जा रही थी 93 की मुरली कोट की, मैंने उसमें बाबा ने कहा, पहली, क्या मेरी, चेक करिएगा, नोट कर लीजिए, चेक करिए, क्या मेरी सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना है? चेक करें। जो मेरा मित्र, उसके प्रति कल्याण की भावना, जो मेरा मित्र नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, उसके जो हो भले होता रहे, कल्याण की भावना तो नहीं है। तो पहली चीज, अपने संकल्पों में सर्व प्रति कल्याण की भावना हमें बना के रखनी। मंजूर? मंजूर? दूसरी बात, बाबा कहता है, कोई आत्मा कैसी भी है, सदा उसे सहयोग देने की भावना, सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना। बाबा हमको सहयोग देता है? कोई बच्चा नहीं कह सकता कि मुझे बाबा का सहयोग प्राप्त नहीं होता, मैं उसकी संतान हूं, वो बीज रूप है, उसकी बच्ची हूं। एम मेरा क्या है? बाप समान बनना, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। अगर हम वो डिग्रीज देखें बाप समान की, तो क्या कमाल की है। क्या मैं इतना काम कर सकती हूं? सर्व को स्नेह और सहयोग दूं? चेक करिएगा। सुखमय संसार बनाना है, उसमें हमने एक सिंबल बनाया हुआ है जिसमें एक हाथ से हाथ जोड़े हुए हैं, सहयोग। सहयोग कई प्रकार से हम दे सकते हैं। कोई आत्मा कमजोर है, उसको शक्ति देके, हिम्मत देके, उमंग उत्साह देके, कई प्रकार से सहयोग है। बाबा धन की बात नहीं करता है, उससे आपका कर्म बंधन बनेगा, और किसी भी आत्मा को एक्स्ट्रा करना, उससे भी कर्म बंधन बनेगा। हमें बैलेंस में रख करके स्नेही और सहयोगी रहना है, बैलेंस में। उदाहरण के रूप से बाबा कहते बच्चे इतना भी सहयोग नहीं दो रहम के वश होके जो उसकी गलत आदत गलत संस्कार पड़ जाए, उसमें हमें समझदार रहना है। तीसरी बात जिसको बाबा कहते हैं अपने साथी हैं, हम इकट्ठे एक ही स्कूल के बच्चे हैं, एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं। कभी हम देखते हैं कोई पुरुषार्थी बहुत अच्छा है, कोई थोड़ा पीछे है। क्या सच में मेरे अंदर अगर कोई पीछे चल रहा है तो क्या हिम्मत उमंग उत्साह खुशी देकर उसे खड़ा करने की भावना है? आत्मा का निज गुण क्या है? स्नेह, शक्ति, आनंद, खुशी। अगर मेरे किसी साथी आत्मा में मुझे वो नजर नहीं आ रहा तो क्या मैं ये करती हूं? इसी रीति से बाबा ने कहा तीसरी भावना। चौथी भावना जिसको मैंने शुरू में बताया, कोई आत्मा कैसी भी हो अपनेपन की भावना, ये डिफिकल्ट। कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपको बहुत उल्टा बोल रहा है, लेकिन फिर भी बाप समान निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, बाबा कहता है वो भावना उसके प्रति क्षमाशीलता की भावना। जितने आप क्षमाशील होंगे उतने आप स्वच्छ होंगे। अगर आप क्षमाशील नहीं हैं, व्यक्ति की किचरे को आपने अंदर रखा है तो स्वच्छता तो नहीं है ना, निर्मलता तो नहीं है ना, ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है ना। इस बात पर भी क्षमाशील होना, ये अपने आप को ऊंचा उठाना है, क्योंकि क्षमाशील व्यक्ति को सहनशील भी होना पड़ेगा। हम लोग बचपन में कविताएं पढ़ते थे जब स्कूल में पढ़ाई जाती थी, तो उसमें एक नहीं आता है भाई विष्णु का क्या घटा, जो भृगु ने विष्णु के लात मारी तो विष्णु का तो कुछ नहीं घटा ना, विष्णु ने क्षमा बड़े इनको चाहिए छोटन को उत्पात, कहा घट्यो विष्णु को जो भृगु मारी लात। विष्णु ने क्षमा किया ना, विष्णु विष्णु है, आप हैं, आप है। अपने स्वमान, अपने स्टेटस, अपने पोजीशन को देखते हुए क्षमाशील खुद को स्वच्छ, तब मेरी वृत्ति शुद्ध और शक्तिशाली हो। पांचवी बात आत्मिक स्वरूप की भावना जो हमने लिया पहले। अब मैं आपका ध्यान एक विशेष, बुरा नहीं मानना, कमजोरी की तरफ खींचाना चाहूंगी। क्या सच में हम ऐसी भावना रख करके सदा चलते हैं? मानो हमारा केंद्र है, सेंटर है, सेंटर पर एक दूसरे को हम किस भाव और भावना से देखते हैं? हमें गुलजार दादी सिखाते थे, हम कन्याएं रहती थी, दादी सिखाते थे, अगर किसी ने कोई बात कही और आपने बोला कुछ नहीं, लेकिन आपने सिर्फ ऐसे सिर हिला दिया, माना आपने आग में तेल डाल दिया। बातें होती हैं, और अगर मैंने अच्छे वायुमंडल को, अरे आप क्या बात करते हो, मुझसे पूछो, मैं जानती हूं ना, मैं उसके साथ रही, अच्छे वायुमंडल को अगर मैंने अपनी इस गलती से नष्ट किया, इतनी आत्माओं की बुद्धि को मलिन किया, उनकी बुद्धि का योग बाबा से तुड़वाया, इसका बोझ किस पर? खुद पर आएगा? बाबा हम सब कुछ जानता है, बाबा से कोई छिपा हुआ नहीं है। कभी भी बाबा ने किसी भी आत्मा को डायरेक्टली भी नहीं बोला होगा। आप अव्यक्त बाप दादा को देखते हो, कितना युक्ति से उस चीज को बाबा समाप्त करता है। आज अगर हमारे परिवार के किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात होती है, तो हम क्या करते हैं? उसको खत्म करते हैं ना, या फैलाते हैं? क्या करते हैं? खत्म करते हैं, फैलाते तो नहीं है ना। अगर मैंने किसी की बात सुनी और मैं उसको फैलाऊं, तो मैंने कैसा वायुमंडल बनाया? मैंने कैसा वायुमंडल बनाया? बाबा सिखाते हैं, दादियां सिखाती हैं, हमें निमित्त नहीं बनना है। वायुमंडल खराब करने के निमित्त मुझे नहीं बनना है, मुझे अपने आप को सेफ रखना है। ये वायदा प्रतिज्ञा, जो मैं बात कह रही हूं गलत तो नहीं है? गलत है, ठीक है ना? तो मैं वायदा लूंगी फिर। जो भाई बहन हिम्मत करके कहते हैं हम कदापि नेगेटिव वायुमंडल ना बनाएंगे, ना उसमें सहयोग देंगे, वो हाथ खड़े करो, दो दो हाथ खड़े करो। पक्का? जिसका हाथ नीचे है मैं समझ जाऊंगी फिर। हाँ, दोनों हाथ ऊपर है ना, शाबाश। कभी नहीं, हम इतने सारे संगठित रूप से इतना विशाल कार्य करेंगे तो सत्युग तो आया क्या है? हमारी वृत्ति पावरफुल क्यों है? उसका कारण है, हम सब बच्चे पवित्र बच्चे हैं। हम दुनियावी नहीं हैं। पवित्रता की धारणा वाले हैं, तो पवित्रता की धारणा वालों के संकल्पों में शक्ति होती है। कभी कोई बड़ा कोई बात कहते हैं तो क्या कहते हैं, नहीं दीदी प्लीज ऐसे नहीं बोलो, बोलते हैं ना, क्यों? पवित्रता में शक्ति है। पवित्र व्यक्ति के संकल्पों से सत्यता सिद्ध हो जाती है। इसलिए बाबा ने ये पवित्रता की शक्ति हमको दे करके और जिम्मेवार बना दिया है, और जिम्मेवार बना दिया है कि हमें इस शक्ति का उपयोग कैसे करना है। सकाश, चलो कहीं पर कुछ है भी, मेरा काम है सकाश देना, वायुमंडल ठीक करना, ये मेरा काम है ना। दो दो हाथ खड़े किए तो वायुमंडल ठीक करना ये मेरा काम है, हमने करना है, दूसरा कोई नहीं करेगा, मैंने करना है। और सच में आपको कहती हूं, मैं एक मिसाल सुनाऊंगी आपको कि वो सच्ची घटना है, इससे थोड़ी भिन्न है। एक्सपेरिमेंट था जब ये कोविड हुआ ना कोरोना, तो उसमें हमारे एक भाई आदित्य सिंगल हैं, जिसको आप शायद जानते हों, मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं और बहुत हजारों की क्लास इकट्ठी लेती हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसका नाम है, अपनी बाबा की बच्ची है। और आदित्य के युगल, वो भी साइंटिस्ट हैं, तो सुधीर भाई उनका नाम, वो कोविड में बहुत डाउन हो गया, उसकी जो ऑक्सीजन लेवल थी 60 पे आ गई, डेंजरस लेवल थी। हॉस्पिटल में एडमिट था आदित्य, मैंने कहा दीदी आप थोड़ी बात करो, वो आपको याद कर रहा है, आपको भाई साहब को याद कर रहा है, जैसे ऑक्सीजन पूरी नहीं जाती है तो कुछ बोलते हैं ना, डॉक्टर आशा को फोन करो। तो मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, लेकिन उसकी बुद्धि में वो था। मैं आपको सच बताती हूं, उसकी कंडीशन बिल्कुल गड़बड़, वो जीवन मृत्यु में झूल रहा था, लेकिन मैंने फोन पर ही वीडियो कॉल किया। मैंने कहा अरे सुधीर भाई आपके तो पैरामीटर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिखा रहे हैं, ये कल से भी अच्छे हैं, और आप थोड़ी और आज मेहनत करना, पैरामीटर उसके बिल्कुल खराब थे, लेकिन उसको हिम्मत दी, बहुत अच्छे और आज थोड़ी हिम्मत करना, कल और अच्छे हो जाएंगे। सच, उस आत्मा में कहां से शक्ति बाबा ने भरी और उसके पैरामीटर सारे ठीक होने शुरू हो गए। आईसीयू से मेरे पास फोन आया, दीदी आपने क्या बात की, इसमें इतना परिवर्तन आ रहा है। ये है संकल्प शक्ति की कमाल और शुभ भावना जो वृत्ति में रखो ना, उसकी कमाल। आज इस क्लास से हम ये कंप्लेन नहीं करेंगे कि वहां वायुमंडल अच्छा नहीं है, नहीं। मैं किस लिए हूं? मैं वायुमंडल को ठीक करूंगी। ठीक है, कंप्लेन नहीं करूंगी, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं बाबा की शक्ति से, अपनी शुद्ध वृत्ति से वायुमंडल को अच्छा बनाऊंगी। पक्की बात, पक्की बात, अभी बोल नहीं रहे हो, पक्की बात, कंप्लेन नहीं करेंगे लेकिन करके दिखाएंगे, जिसको बाबा कहते कंप्लीट करेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र इतना बड़ा है, महाराष्ट्र सारा सारा इकट्ठा मिलकर के अगर ये कार्य करे तो हमारा सारा भारत बदल जाएगा, सारा भारत बदल जाएगा। इतनी शक्ति है हम ब्राह्मणों में। ओके, ओम शांति।
Thank you.